ज्ञान ध्यान चक्षुर्मीलितं तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भवति स्वयं रूप दानमिति सर्वदान्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत वेदांत विश्वास हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम
राम। तभी तक कर्म लेवल की समरी भगवान ने बताई फर्स्ट छह चैप्टर की। अभी निष्काम कर्म अर्थात कर्ता को समझने का जो विधि है उसको आगे से फिर भगवान समझाएंगे, क्योंकि कई बार लोग जैसे तीसरे अध्याय में था कि कर्ता को लेकर के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन करता है, तो भगवान उसकी समरी बता रहे हैं अभी। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पर कोई बात रिपीटेड हो रही है, तो एक्चुअली समरी में तो सिलेक्टेड पॉइंट होते ही है, वही पॉइंट जो पहले चर्चा हो चुकी है वो पॉइंट फिर से यहाँ पर समरी के रूप में एक लाइन में बता दिया है। सो टेक्स्ट नंबर 13 में भगवान कह रहे हैं कि आई टेल अबाउट एक्शंस। पढ़िए।
हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो।
सो समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जब भगवान इस तरह से कहते हैं कारण, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसको पढ़िए तात्पर्य का।
यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्योंकि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावनामय व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के पांच कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन पांचों कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ और वेदांत अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को इसी रूप में स्वीकार करते हैं। अतएव ऐसे शास्त्र की राय ग्रहण करनी चाहिए। चरम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण भावना भावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किए जाते हैं उनका फल न तो इस जीवन में नहीं मृत्यु के पश्चात मिलता है।
तो भगवान ने वेदांत का रेफरेंस दिया है इसमें, वेदांत सूत्र का। सो जनरली भगवान का इसका, जैसे प्रभुपाद बताया कि इसका उद्देश्य यही है कि कर्ता के रूप में हम अपने आप को कर्म के बंधनों से मुक्त करें। अगर हम जान लेंगे कि पांच कारण अलग अलग है कर्म के, तो फिर हम ये विचार से दूषित नहीं होंगे कि इस कर्म मैंने ये कार्य किया, कर्ता मैं हूँ। तो कई बार आपको ये पूछा जाता है कि जनरली कई बार पूछते हैं भगवद गीता का ये पर्टिकुलर जो रीजन है, ये बहुत हेल्प होता है। कई बार हमारे डिस्कशन में भी आता है कि कर्म जो होता है उसके किसी भी कर्म को कंप्लीट करने के लिए कौन सी चीज की आवश्यकता होती है, तो पांच वस्तु चाहिए, ये सारी होगी तब कर्म होगा ऐसे। ओके, टेक्स्ट नंबर 14।
कर्मानुष्ठान कर्ता विभिन्न इंद्रियों अनेक प्रकार ना प्रयासों अने अंते परमात्मा पांच कर्म ना कारण छे।
शरीर कर्म का स्थान, फिर कर्ता जो डूअर मींस करने वाला, विभिन्न इंद्रियां चेष्टाएं और परमात्मा, ये सब मिलकर के कर्म बनता है। प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते, सब कुछ परम इच्छा भगवान पर निर्भर रहता है। अर्थात परमेश्वर परम कारण है। सो अधिष्ठानम शब्द का अर्थ प्रभुपाद सेड बॉडी,
स्थान
कर्ता जो है सोल, जो कि अहंकार से ग्रस्त है, इसलिए कर्म कर रहा है भौतिक संसार में भौतिक चेतना के कारण। फिर कारणम अर्थात माध्यम जो है वो इंद्रियां, चेष्टा, वो हमारी इंद्रियों के द्वारा किए गए प्रयत्न, और दैवम अर्थात परमात्मा। दैवम का अर्थ होता है परमात्मा। एक्चुअली दैव जो है अल्टीमेट वो है सुपर परम कर्ता, वो है तो संभाल के आना। तो अल्टीमेटली द सुप्रीम कॉज, और सुपर कॉज मीन्स परमात्मा, अल्टीमेटली वो करता है। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि हम करता है क्योंकि हमारी स्वतंत्रता जो फ्री विल है उसके आधार पर कर्म का आधार क्रिएट होता है, या उससे कर्म प्रकट होता है मेरी स्वतंत्रता से। लेकिन यह इतना होने के बाद भी मेरे जो एंडेवर्स है वो स्वतंत्र नहीं है। जीव का प्रोपर आत्मा कर्म के उपकरण इंद्रिय है, और आत्मा इन इंद्रियों के विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए प्रत्येक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। दैट मीन्स यहाँ तक कि हम भले कर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें, किंतु अंतिम कर्ता भगवान है। बल्ले विद्याभूषण से इफ द जीवास बीइंग अ डूअर इज अंडर द रेगुलेटिंग कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, देन वी हैव टू से दैट हिज एक्टिविटी डज नॉट प्रोसीड फ्रॉम हिज ओन विल, दैट इज ही इज एक्चुअली जस्ट लाइक अ स्टोन और सम अदर इनर्ट ऑब्जेक्ट। इन दैट केस डोंट द इंजेक्शंस एंड प्रोहिबिशंस ऑफ स्क्रिप्चर बिकम यूजलेस। बल्ले विद्याभूषण ये बताते हैं, अर्थात इसका ये तर्क है, इसका अर्थ ये होता है कि जीव जो है वो भगवान के द्वारा शरीर प्राप्त करता है, भगवान से शरीर प्राप्त करता है, और कुछ विशेष शक्तियां उसको प्रदान की जाती है उस शरीर के माध्यम से, और फिर वो ऐसा मानने लगता है कि अब वो प्रोप्राइटर बन गया है, और फिर अपनी जो इच्छा है उसका उपयोग करना शुरू करता है। जैसे एक बार हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जीव स्वतंत्र है भी और नहीं भी, कैसे, जैसे 13 चैप्टर में ये बात हुई थी हमारी, इफ यू रिमेम्बर। भगवान क्या करते हैं कि जैसे समझ लो कि एक आपके घर के बाहर आपने एक फेंसिंग बना दी है, और फेंसिंग के अंदर आपने खुला जगह काफी बड़ा है, उसमें आप कोई छोटे बच्चे को रख दो तो वहां पर वो झूला खा सकता है, वो भोजन लेना है तो फ्रूट रखे हुए फ्रूट भी खा सकता है, उसको जो कुछ करना है वहां कर सकता है, लेकिन वो फेंसिंग के बाहर नहीं आ सकता है। आपने दरवाजा बंद करके रखा है पार्क का, आपके बगीचे का, तो बाहर नहीं जा सकता, लेकिन इनसाइड उस फेंसिंग के अंदर उसको पूरी स्वतंत्रता है। जैसे आप प्लेन में बैठे हो, तो प्लेन में बैठे हो तो आपको लगता है कि आप पूर्ण स्वतंत्र हो, आप जब चाहो तब खड़े हो सकते हो, जब चाहो तब आप लेबोरेटरी यूज कर सकते हो, जब चाहो तब आप भोजन मंगा सकते हो, खाना खा सकते हो, जूसेस मंगवा सकते हो, पी सकते हो, और वो बड़े अच्छे स्माइल के साथ वो टीवी भी देख सकते हो उसमें आप ये लोकेशन देख सकते हो, आप कहाँ पहुंचे, गेम्स खेल सकते हो, कार्टून्स देख सकते हो, ये सब कुछ देख सकते हो, और जो अटेंडेंट आते हैं वो भी बड़े बड़े अच्छे से स्माइल के साथ आएंगे, सर आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए आपको हेल्प करके चाहिए, लेकिन आप प्लेन में बंधे हुए हो,
बाहर नहीं जा
सकते, आप प्लेन के बाहर नहीं जा सकते। तो इसी तरह से जीव की अपनी फ्री विल है, जीव का फ्री विल है, लेकिन इस प्रकार का फ्री विल है, अर्थात उसका शरीर उसको दिया गया है, उस शरीर में कुछ शक्तियां दी, जैसे कुत्ते की शक्ति है कि वो भौंक सकता है भोजन के लिए, इधर उधर भाग सकता है, सूंघ सकता है दूर दूर से, ये सब शक्तियां उसको दी गई है। लेकिन मनुष्य को जैसी शक्ति है ऐसी कुत्ते के पास नहीं है। तो हरेक के पास कुछ ना कुछ शक्तियां ऐसे है उसके शरीर के आधार पर, लेकिन वो उतना ही कर सकता है। जैसे मनुष्य का छोड़ करके बाकी सारी योनि में तो कर्म का भुगतान है, लेकिन मनुष्य योनि में आपको ये अवसर प्राप्त होता है कि आप नए कर्म बना सकते हो, बाकी किसी योनि में ये संभव नहीं है। अर्थात आप यहाँ पर किसी को मनुष्य के रूप में अगर कोई आप किसी की हत्या करते हो तो वो नया कर्म बना, लेकिन पशु के रूप में अगर किसी ने किसी को मार डाला, अगर एक समझ लो कि जंगली सुअर ने किसी की हत्या कर दी तो उसको पाप नहीं लगता उसका कि भाई ब्राह्मण को मार डाला, उसको कुछ उसको पता ही नहीं है कि मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, कर्म क्या है अकर्म क्या, उसको कुछ नहीं पता। तो इसलिए नए कर्म मनुष्य करता है, लेकिन उसकी स्वतंत्र इच्छा इच्छा करना उसके हाथ में है, लेकिन उसको इच्छा को सैंक्शन करना परमात्मा के हाथ में। इसलिए भगवान ने कहा अल्टीमेटली परमात्मा सैंक्शन करते हैं। तो कोई ये प्रश्न पूछा था आपने उस समय चर्चा की थी, उस समय बात किया था कि कोई कह सकता है ना कि भगवान परमात्मा फिर ऐसा कोई अधम कार्य करने के लिए सैंक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि परमात्मा कृपा करने के लिए नहीं बैठे। परमात्मा का काम आपको कृपा करना नहीं है, परमात्मा का काम है आपका अनुमंता, आपको परमिशन देना। ऐसा ऐसा भगवान भक्तों के साथ जैसे डील करते हैं वैसे परमात्मा साधारण जीव के साथ डील नहीं करते। और समझ लो कि आपका आपका बेटा बेटी है वो आपसे कुछ मांगते तो आप सोचोगे कि इसको दूं नहीं दूं, इसको हाँ बोलूं इसको ना बोलूं, आप सोचोगे। लेकिन इसका आधार है आपका संबंध है उसके साथ। लेकिन परमात्मा का जीवों के साथ उपदृष्टा अनुमंता का संबंध है, अर्थात वो तो केवल देखते हैं, बस आप करते रहो जो कुछ करना है करते रहो, आपके जो आपकी इच्छाओं को पूरी करने का काम उनका है, आप जो कुछ इच्छा करोगे वो पूरा करेंगे वो आपके कर्मों के आधार से। अगर आपका समझ लो कर्म आपके फेवर में है तो आपको यस यू अलाउड। ऐसे कोई कहता है कि मुझे किसी की हत्या करनी है तो भगवान परमात्मा के रूप के आपकी इस टेंडेंसी को देखते हैं और अनुमति देते हैं। लेकिन अगर समझ लो कि भगवान किसी भक्त की रक्षा कर रहे हैं तो यदि भी कोई व्यक्ति उनको हत्या करना चाहे तभी परमात्मा को करने नहीं देगा ऐसे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की शक्ति का हाथ है। सो इन एनी वे परमात्मा इज परमिशन गिवर। अभी कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि भाई सबको हाँ ही बोलने का है, किसी को ना तो बोलना है ही नहीं परमेश्वर को, परमात्मा को सबको हाँ ही बोलना है, तो फिर परमात्मा का ये अनुमंता का ये फंक्शनिंग है उसका वैल्यू क्या। अगर समझ लो कि आपको गेट के ऊपर बिठाया कि भाई यहां से आप आपकी परमिशन के बिना कोई अंदर जाएगा नहीं और जो भी आएगा उसको परमिशन दे देने की, तो इसका वैल्यू क्या। भाई मैंने बैठाया क्यों है फिर, एक तो आप मेरी परमिशन के बिना कोई जाएगा नहीं और सबको परमिशन देने की है, देन व्हाट इज द यूज। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर। लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन है ना कि जो कोई आए उसको ना नहीं बोलना है,
जाने तो देना ही।
लेकिन आपकी परमिशन के बिना कोई जाएगा नहीं, अगर आप ना बोलोगे तो कोई अंदर जाएगा नहीं और आप किसी को ना नहीं बोलोगे।
निगरानी में
साक्षी तो वो अलग है ना, ऐसे बोले ना
उपदृष्टा है साक्षी,
हाँ वो अलग है, अब उसकी बात नहीं कर रहे,
परमिशन गिवर की बात हो रही है। क्योंकि संसार का नियम ऐसा है कि उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, प्रकृति आप कुछ सहायता नहीं कर सकती, इसलिए परमिशन आप भले उनको यस बोलेंगे आपको लेकिन वो यश करेंगे तभी प्रकृति भी काम करेगी, नहीं तो काम नहीं करेगी। इसलिए भगवान की अनुमति, एक घास के तिनके को हिलने के लिए भी भगवान की अनुमति चाहिए, ही इज अ परमिशन गिवर बिकॉज इज अ सुप्रीम अथॉरिटी, ही इज अ कंट्रोलर और सारी सृष्टि का कंट्रोलर है। इसलिए उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, कोई देवता काम नहीं करेगा, कोई प्रकृति काम नहीं करेगी। तो वो भगवान परमात्मा के रूप में अनुमंता का काम करते हैं, परमिशन के बाद, इसलिए वो परम कारण है, अल्टीमेट कॉज वो है। लेकिन जीव को वो छोटा सा विल पावर, ये विल पावर है छोटा सा। तभी आप समझ गए ना कि भगवान की नियामक शक्ति और परम जीवात्मा की स्वतंत्रता, ये दोनों आपस में टकराते नहीं है। इसको आप समझे ना, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है और जीव इंडिपेंडेंट है, ये दोनों विरोधी नहीं एक दूसरे के। इज दैट क्लियर? ये आप समझे कि नहीं समझे? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि प्लेन में आप स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन प्लेन में बैठे रहना पड़ेगा, ये परमात्मा का इच्छा है, ऐसा लाइक दैट। तो आप, क्योंकि एयरलाइन कंपनी ने आपको ये सुविधा दी है कि आप लेबोरेटरी यूज कर सकते हो, इसलिए यूज कर सकते हो। और हम सोचते हैं कि नहीं, देखो मैं खड़ा होकर लेबोरेटरी यूज कर सकता हूँ, नॉट दैट। ये ठीक है, क्लियर है ना? धन भी को फंदर, ये वही बात है जो हमने पहले चर्चा कर ली है। ओके, सो जो कोई अच्छे बुरे कर्म हम करते हैं, वो टेक्स्ट नंबर 15 में है, इसके विषय में पढ़िए।
क्वेश्चन
है सर,
तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति पाप कर्म करने का चेष्टा करता है और कभी कभी वो पाप कर्म कर नहीं पाता फॉर सम रीजन, राइट? तो ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब परमात्मा से को सुपर सीड करके भगवान ने सहायता की, क्योंकि वो पाप कर्म में उसको समहाउ उसकी इच्छा थी, फिर इच्छा नहीं हुई या सिचुएशंस नहीं बने, या सो हाउ टू सी दैट?
एक्चुअली भगवान पर्सनली डील करने किसी के साथ, तो उसका शर्त यही है कि वो व्यक्ति शरणागत होना चाहिए, नहीं तो कृष्ण पर्सनली एज ए भगवान वो पिक्चर में नहीं आता कहीं पर। जनरली ही इज नॉट, इवन डिवोटीज में भी जिनकी श्रद्धा बड़ी कमजोर होती है, तो भगवान किसी के पिक्चर में बीच में आते नहीं जनरली। फिर भी वो स्वतंत्र है, किसी भक्त पर कृपा करने के लिए उनको कोई नियम नहीं चाहिए। एक्चुअली कृष्ण का एक चीज हमेशा याद हमें रखना चाहिए कि उनको कोई नियम बांध नहीं सकता। मीन्स ऐसा कुछ नियम नहीं है कि ये करना, ये भगवान को करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने नियम से पर है। जनरली वो आते नहीं किसी के सामने, जैसे मतलब कोई ले मैन कोई है, कोई भौतिकवादी व्यक्ति है, चोर है या उचक्का है कोई, तो ऐसे व्यक्ति के लाइफ में भगवान ऐसे इंटरफेयर नहीं करते, पिक्चर में नहीं आते उनके, वो करने देते उसको जो करना है। बट इन एनी केस उनकी मन में कोई इच्छा हो गई, देन ऐसा कोई बोल नहीं सकता है वो तो भक्त नहीं है, आप क्यों गए उसके पास? Nobody can tell him. एक तो ये बात। दूसरी बात, अगर किसी के पास कोई पूर्व जन्म की अलग अलग प्रकार की सुकृतियां होती है, एक भगवन्मुखी होती है, इस प्रकार के अलग अलग सुकृति, सुकृति मीन्स अच्छे कर्म, पास्ट जन्म के सुकृति, सुख का अर्थ अच्छा, कृति का अर्थ कर्म, को उसने पूर्व जन्म में इस जन्म में कहीं पर छोटा सा भी सुकृति है, और वो सुकृति के कारण अगर वो बच सकता है तो सुकृति उसके आड़े आ जाती है, या फिर किसी वैष्णव का कृपा, या फिर उसने कभी इसको ऑनली और इसको अप्रिशिएट किया है, ऐसा कुछ भी छोटा सुकृति उसने किया है वो उसके आड़े आ जाता है, तो वो बच सकता है ऐसे का। हालांकि उसको नहीं पता ये कैसे हो रहा है ये सब चीज, बट इसलिए समटाइम प्रॉपर यूज टू से गहना कर्मण होगा थी। कर्म का जो साइंस है, बैकग्राउंड में जो चलता है साइंस, उसको समझना तो बहुत मुश्किल है। कौन से जन्म में कौन से कर्म किए थे, कहाँ की सुकृति कब काम आ रही है, वी नेवर एस्टिमेट, वी कैन नॉट एस्टिमेट कहाँ कहाँ कौन सी सुकृति। एक बार वो ऋषि को पकड़ लिया था, उसको मृत्यु को दंड दिया उसको, तो वो बोला कि मैं पूरा जीवन मैंने आपका भगवान का सेवा किया है, पुण्य किया, कोई पाप नहीं किया, और सीधा यमराज के पास क्यों गया मैं। तो उसको कहा कि भाई तुमने जब बहुत छोटे थे तो एक बार तुमने एक छोटे से कीड़े के आंख में एक पिन मार दी थी तो उसकी आंख फूट गई थी, तो इसलिए तुम्हें इसका पाप भुगतना पड़ेगा, यू हैव टू डू। तो वो गुस्सा हो गया, बोले मैं छोटा था मुझे नहीं पता था कि किसी को ऐसा नहीं किया जाता है, वो मेरी गलत, वो तो बचपन में हुआ है, उसके लिए तुम इतना बड़ा सजा मुझे दो कि जाओ तुम यमराज बनने के लायक नहीं, तुम विदुर बनो। और उसको श्राप मिल गया, दासी पुत्र बन के जन्म लो तुम। तो फिर वो यमराज स्वयं दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया, तब वो विदुर बना। ऐसे
वो भी भगवान की इच्छा थी ना?
ऑफ कोर्स भगवान की इच्छा थी, लेकिन जनरली ये भगवान कभी भी अपनी इच्छा भी प्रकट करते हैं ना, तो एग्जांपल क्रिएट करके प्रकट करते हैं कि ऐसा एक एग्जांपल क्रिएट हो गया ऐसे। तो ऐसे
तो ब्रो मेरा क्वेश्चन आपने बताया वो एकदम सही है, मगर भक्तों के साथ कभी जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ जो कर्म नहीं करना, विकर्म में जुड़ना चाहे और हरिनाम या कुछ और चीजों में इन्वॉल्व या कृष्ण कथा में इन्वॉल्व हो जाए, तो उस इन दैट केस कृष्ण इन डिफरेंट फॉर्म्स प्रोटेक्ट्स द
डिवोटी बिकॉज़ ही सरेंडर्ड, वो प्रोसेस में लगा हुआ है।
बिकॉज़ सीधा कंपैरिजन है कि जैसे माया अटैक करती है कोई भी कारण से, हमें लालायित करती है, मगर अगर अभी अगर किसी न किसी तरह से, तो इन दैट केस सुपर सोल से मतलब परमात्मा से भगवान
परमात्मा कैसी वस्तु है, समझ लो कि यहाँ पर पुलिस, यहाँ कोई पुलिस कमिश्नर है तो आता तो होम मिनिस्टर के अंडर में आता है, तो पुलिस कमिश्नर के पावर्स कम होते हैं, लेकिन होम मिनिस्टर पुलिस कमिश्नर को कह सकते हैं कि इसको कहीं पर भी रोकने का नहीं, इसको ये सब सुविधा दे दो, यू नो। तो पुलिस कमिश्नर को एम्पावर किया गया क्योंकि वो तो उनकी मिनिस्ट्री में ही है। तो परमात्मा भगवान की शक्ति है, भगवान का अंश है परमात्मा, क्योंकि उनका ही दूसरा एक स्वरूप है परमात्मा, लेकिन परमात्मा का पावर जो है वो पोटेंशियल ऐसे पोटेंशियल लिमिटेड है। बट अगर भगवान के शरणागत भक्त होते हैं उनके लिए वही हृदय में परमात्मा हेल्प करते हैं। और एक्चुअली डिवोटी सेज फर्दर थोड़ा मोर और गहराई से, तो परमात्मा पर्सनली कुछ नहीं करते डिवोटीज के साथ, कृष्ण स्वयं आके करते हैं हृदय में, क्योंकि परमात्मा के पास, परमात्मा तो बाउंड है ना, हनुमंता उपदेष्टा, वो अपना बदल नहीं सकते, बट कृष्ण उस परमात्मा का स्थान ले सकते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गुरु के विषय में कहते हैं ना, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, तो वो कृष्ण पर्सनली आके कर सकते हैं कार्य, लेकिन परमात्मा हैज लिमिटेड पावर, परमात्मा कुछ नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स उसको चैत्य गुरु बोलते हैं, परमात्मा को चैत्य गुरु क्या करते हैं कि वो को हेल्प करते हैं हृदय से, जो आध्यात्मिक गुरु आपको बाहर से हेल्प करते हैं ऐसे चैत्य गुरु अंदर से हेल्प करते हैं। तो हेल्प करने का काम करते हैं वो, बट देट इज अगेन एज आई सेड कि जैसे होम मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है, इन द सेम वे कृष्णा पर्सनली हेल्प दैट पर्सन थ्रू परमात्मा। बट परमात्मा इंडिपेंडेंटली कैन नॉट डू एनीथिंग, इवन दो बोथ आर सेम पर्सन, परमात्मा और भगवान, कृष्ण में और परमात्मा में नो डिफरेंस बिकॉज बोथ आर सेम, लेकिन परमात्मा इज अ स्मॉलर वर्जन एंड भगवान इज अ फुल वर्जन। सूर्य का राजा विवस्वान और सूर्य का गोला वो परमात्मा है, दैट वे। सो यस, पांच उचित अनुचित के विषय भगवान कहते आगे 15 यस।
मनुष्य अपने शरीर मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है
वह इन पांच कारणों के फल स्वरूप होता है।
तात्पर्य
तात्पर्य इस श्लोक में न्याय मतलब उचित तथा विपरीत मतलब अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदर्शों की अवहेलना की जाती है, किंतु जो कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए पांच कारणों की आवश्यकता पड़ती है।
तो ये पांचों कारण इसके अंदर है, ऑल फाइव रीजंस। सो द पॉइंट हियर इज नोबडी इज फ्री फ्रॉम दिस फाइव डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। कोई भी कार्य हम करते हैं तो ये पांच तो उसके मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो चाहिए ही, लेकिन इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है भगवान के द्वारा तीन कैटेगरी में,
शरीर मनवाणी।
यस, शरीर मनोवाणी तो आपका BMW। यस, उसके बाद में तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। सो वो हमने पहले भी चर्चा किया था अभी, राइट, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। लेकिन ये सारे कर्म का अंतिम जो परमिशन गिवर है वो है सुपर सोल, टेक्स्ट नंबर 16। यस यस,
तो ये जो त्रिमुंडी सन्यासी है दैट रिप्रेजेंट दिस थ्री थिंग्स,
बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, तीन चीज, मनसा वाचा कर्म। सोलह,
માટે જે મનુષ્ય આ પાંચ કારણોનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કરતા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુઓને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી। મૂર્ખ માણસ સમજી શકતો નથી કે પરમાત્મા મિત્ર તરીકે તેની અંદર બિરાજે છે અને તેના કર્મનો દોરી સંચાર કરી રહ્યા છે। જો કે સ્થાન કરતા પ્રયાસ તથા ઇન્દ્રિયો એ ભૌતિક કારણો છે, તેમ છતાં અંતિમ મુખ્ય કારણ સ્વયં ભગવાન છે। માટે મનુષ્ય માત્ર ચાર ભૌતિક કારણો જ નહીં પરંતુ સર્વોપરી સમક્ષ કારણ પણ જોવું જોઈએ। જે મનુષ્ય પરમેશ્વરને જોતો નથી તે પોતાને જ કર્મ કરતા માને છે।
એસો કોઈ શ્લોક થા પહેલે
હા હો ને અહંકાર વિમુડાત્મા કરતા કકૃતે ક્રિયા માણા નહીં ગુણે કર્મ।
તો બીકોઝ સમાધિ કે રૂપ મેં એક તો યે હુઆ કરતા હમ ઇન્દ્ર માન્ય થે ફિર વો વિમુડા વિમુડા કા ચર્ચા હુઆ થા વહી
સ્પેશિયલ ફૂડ।
હા સ્પેશિયલ ફૂડ ફિર 16વે અધ્યાય મેં ભી એસા આયા થા असुरी प्रकृति का वर्णन है ना उसमें। तो वो लोग भी यही सोचते हैं ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। तो ये 16 का अध्याय 3 का भी यहाँ पर समझ आया, 16वें अध्याय का भी यहाँ पर समझ आया असुरी भावना वाले। और जो इस तरह से वेदांत को नहीं मानते वो मूर्ख माने जाते हैं, दुर्मति। हाँ, आई एम फाइंडिंग द वर्ड्स ऑन दुर्मति शब्द पश्यति दुर्मति। ओके, अभी ऐसे मूर्ख व्यक्ति क्या आगे उसके विषय में आगे है फर्दर। नेक्स्ट,
जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि मदी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से
मुदा
होता है।
सो तात्पर्य पढ़िए।
इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने की कोई परम निर्देश भी है तो वह कर्म क्यों करे, लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या कृष्ण भावामृत मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावामृत में परमात्मा या भगवान के आदेश अनुसार कर्म करता है और वध करता हुआ भी वध नहीं करता वह कभी ऐसे वध के फल भुगतता है। जब कोई सैनिक में श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है।
तो यहाँ पर स्पष्ट प्रॉपर ने क्लियर किया इस बात को कि अगर ये श्लोक ध्यान से देखा जाए तो अर्जुन को ही ध्यान में रख के भगवान ने कहा है। वो अर्जुन ये सोचता था ऐसा था ना नान्य ते हन्य मान्य शरीर दूसरे अध्याय में था ये कि ना किसी को मार सकता है और ना किसी को किसी का मृत्यु का कारण बन सकता है। तो इस तरह से अर्जुन भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते है कि वो युद्ध नहीं करना चाहता, वो वास्तव में अपने आप को कर्ता मानने वाली बात होगी और वो अहंकार के द्वारा ग्रस्त है, इसलिए दिस पर्टिकुलर वर्स इज फॉर अर्जुन। ओके, फिर अब 18वां ये एक्चुअली दिस इज ये अंतिम श्लोक है इसके कनेक्शन में, ये 13वें अध्याय का समाधि के रूप में भी है, पढ़िए।
ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया मतलब कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक है।
हाँ। पहले भगवान ने 17वें श्लोक में ये बता दी कि अगर कोई अहंकार से मुक्त होकर के कर्म करता है, जैसे वो पहले बताया उसके विपरीत, अहंकार से मुक्त होकर के कर्म करता है अर्थात अपने आप को कर्ता नहीं मान करके कर्म करता है तो उसको कर्म बंधन नहीं लगता। वही अर्जुन को सिखाना चाहते थे भगवान कि तुम मेरे कहने के कारण युद्ध करो। लेकिन अभी यहाँ पर भगवान ये दो चीज और बताई, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, ये था अपने 13वें अध्याय में था ना, ज्ञान ज्ञेय ये शब्द उसमें उपयोग हुए थे, कर्म कर्ता। सो दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणा है, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण अर्थ करण स्वयं कर्म तथा कर्ता ये तीन कर्म के संघटक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला परम कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने अनुभव करने द्वारा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है जिसे प्रेरणा कहते हैं, और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो गुरु के उपदेश से एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संगठक कहा जाता है। तो यहाँ पर कर्म का पूरा भगवान ने कुंडली दे दिया कि कर्म कैसे होता है। तो सबसे पहले थिंकिंग फीलिंग विलिंग एंड देन एक्शन, उस तरह से आता है। तो पहले आप मन में सोचते हो, ऐसे हर एक चीज में आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा होता है। आपको शायद पता होगा कि कोई भी टेंपल का डेटी इंस्टॉलेशन होता है ना, डेटी इंस्टॉलेशन, वो डेटी इंस्टॉलेशन की शुरुआत कब होती है, जब न्यू डाली जाती है तब होती है, या फिर मूर्ति को रख के उनका अभिषेक शुरू होता है तब होती है। डीटी इंस्टॉलेशन कब शुरू होता है? डीटी इंस्टॉलेशन शुरू होता है जब उस पर्टिकुलर टेम्पल बनाने के लिए किसी ने मन में एक बार सोचा कि यहाँ पर मैं एक मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ, वहां पर डिटी इंस्टॉलेशन शुरू होगा, वहां से शुरू होता है ये कार्य, और फिर धीरे 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 प्राण प्रतिष्ठा वहां से शुरू होती, फिर धीरे 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 जब ये डिटी का पूरा बॉडी तैयार हो जाता है, फिर जब उनकी आंख जब लास्ट में होती है, जब उनकी आंख बने तब जाके डीटी इंस्टॉलेशन समाप्त होता है, इंस्टॉल तब होता है डीटी आंख बनने के बाद, ऑफ कोर्स विधि होती है उसकी, तब वो समाप्त होता है। तो क्या इसका तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति मन में जब संकल्प करता है उसी समय से उसके कर्म का बीज लग जाता है, फिर वहां से वो कर्म शुरू होता है। इसको हम लोग कई बार इसको मैं कहता हूँ ना, विजन बनाओ, व्हाट यू वांट टू सी, आप क्या देखना चाहते हो, विजन, आपका विजन क्या है, तो वो जो मन में कुछ सोचेंगे तब उसके वो कार्य होगा सिद्ध। इसलिए वी ऑल्सो से सम टाइम के लिए हमारे भक्त विजनरी होना चाहिए, बहुत सब विजनरी नहीं हो पाते। विजनरी का अर्थ होता है कि दूरदर्शी, दूर का देखता हो और फिर उस हिसाब से अपने आप को उसमें जोड़ता है और कुछ बड़ा सोच के काम करता है, दूर का सोचता है, बड़ा सोचता है और उस दिशा में काम करता है। तो इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्त होता है वो सिद्धि प्राप्त कर पाता है। यस,
मतलब कि ये हुआ ना कि कोई भी कार्य करता है तो उसको उसका उसके सामने उसका रिजल्ट होता है कि मुझे ये पाना है, पर उसी हिसाब से उस डिरेक्शन में वो कर्म करता है तब जाके उसको या उसके नजदीक पहुंच सकता है।
यस, जनरली यही फॉर्मूला सब जगह होता है, लेकिन वो जो लक्ष्य है जो मुझे पाना है वो सबका अलग अलग हो सकता है। जैसे प्रभुपाद यहाँ पर बैठे बैठे जब एक व्यक्ति जो उनको फोर स्क्वायर पे और कौन सा वो एड्रेस भी मुझे पता था, वो एक चौराया है न्यूयॉर्क में, तो वहां पर टाइम्स स्क्वायर नहीं, एक दूसरा एक चौराया है, आई सॉ ऑल्सो इन गूगल मैप, उसकी बेंच थी। तो चौराया के ऊपर एक प्रभुपाद जो साइड वॉक होता है ना, तो वहां पर प्रभुपाद वो बेंच पर बैठे थे और एक व्यक्ति वहां से गुजर करके वो भी आके प्रभुपाद के बाजू में बेंच पर बैठ गया, और जब प्रभुपाद को पूछा कि स्वामी जी आप लगता है कि आप भारत से आए हो, तो प्रभुपाद ने कहा हाँ। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसने पूछा तो लगता है आप कोई बड़े संत हो, तो बोले हाँ। तो फिर कहा कि अगर आप संत हो तो फिर आपके मंदिर मठ वगैरह सब होता होगा, आपकी मॉनेस्ट्री होगी, आश्रम होगा, मंदिर हो गए, तो ये सब होगा आपका, सेंटर्स वगैरह। तो प्रभुपाद ने कहा कि हाँ, बहुत सारे मंदिर है, बहुत सारे भक्त है और सैकड़ों, अभी इस्कॉन की स्थापना नहीं हुई थी, प्रभुपाद ने कहा कि बहुत सारे टेम्पल्स है हमारे पूरे विश्व में फैले हुए और सैकड़ों सैकड़ों भक्त है, बहुत सारे भक्त है, फिर बहुत सारे प्रचार कार्य, लेकिन लास्ट में फिर प्रभुपाद ने कहा केवल सेपरेटेड बाय टाइम, समय की प्रतीक्षा है ऐसा। तो इसको बोलते विजन,
उन्होंने पहले से अपना लक्ष्य तो की कर ही लिया था कि ये करना है, उसके हिसाब से वो गए तो हुआ।
यस, उनका लक्ष्य था एक ही था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आज्ञा का पालन करना, लेकिन बाद उन्होंने उस आज्ञा का पालन का अर्थ समझा, वो आज्ञा पालन का अर्थ क्या होता है, वो आज्ञा पालन तो सिंपल थी अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो, लेकिन उन्होंने इसका अर्थ समझा कि अगर ये होगा तो ये होगा और ये भक्ति सिद्धांत की सरस्वती की इच्छा है। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक अमेरिकन के पास जाऊं उसको भक्त बना करके महाराज गुरु महाराज मेरा काम हो गया चलो वृंदावन वापिस, वो भी कर सकते थे, वो तभी भी भक्ति सिद्धांत तो खुश ही होने वाले थे क्योंकि उन्होंने जो आदेश दिया था वो उठने में आ जाता है, लेकिन मनोभिष्टम इच्छा क्या है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा क्या है, तो वो इच्छा के अनुसार फिर प्रभुपाद ने कार्य किया। शब्दों के अनुसार, शब्द तो दो लाइन में थे लेकिन इच्छा क्या थी वो इच्छा प्रभुपाद ने फुलफिल की। और हो सकता है कि शायद प्रभुपाद ने उनकी इच्छा से बहुत ज्यादा ही कर दिया। ऑफ कोर्स गुरु की इच्छा तो अनंत होती है और जो भी शिष्य करते हैं गुरु के लिए तो गुरु उससे प्रसन्न होते हैं। और बोलते हैं ना जैसे बाप से बेटा सवाया हो ऐसा बाप चाहता है, जैसे गुरु भी ऐसा चाहता है कि मेरा शिष्य मुझसे ज्यादा करे। तो प्रभुपाद ने वो करके दिखाया। सो दैट इज द पॉइंट कि हम विजन बना के कार्य करें तो आगे बढ़ सकते हैं। जैसे विजन बनाने का अर्थ कैसा होता है, जैसे आप बताया कि अगर मेरी बुद्धि छोटी है तो मैं कितना भी मेहनत करूंगा तो मैं इतना ही सोच पाऊंगा। कि जैसे मटेरियल वर्ल्ड में कैसा होता है, कोई सोचता है कि मैं अगर साल में 2 लाख रुपया कमा लूं तो मेरा तो घर मस्त हो जाएगा, या साल में 10 लाख रुपया कमा लूं। तो मटेरियल वर्ल्ड में एक ऐसा सोचता है कि मैं साल में 10 लाख रुपया। लेकिन जो बहुत बड़े एम्बिशियस होते हैं वो लोग तो ये लाख में तो बात नहीं करते। दे ऑलवेज थिंक मैं 500 करोड़, 1000 करोड़, 10000 करोड़ ऐसा सोचते हैं ना। सो दिस इज विजन, ये मटेरियल मंडेन एग्जांपल है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा है कि आप क्या सोचते हो, सोचो जैसे somebody thinks I want to make you know ISKCON education, समझ लो कि मुझे हर एक स्कूल में या हर एक बड़ी यूनिवर्सिटीज में भगवद गीता सिलेबस के रूप में देखना चाहता हूं मैं कि भगवद गीता वहां सिलेबस में पढ़ाई जाए। दिस इज विजन फॉर एग्जांपल। या फिर समझ लो कि जितने हिंदू वैदिक संस्कृति या हिंदू को फॉलो करने वाले जितने भी सेक्ट है भारत में उन सब से ISKCON का अच्छा रिलेशन बना दे, भले मायावादी होंगे बट मेक अ यूनियन इज अ विजन। और जितने भी गौड़िया मठ है वो तो सारे गौड़िया मठ और ISKCON सब मिल जाए एक साथ और वो प्रचार एक साथ करें। दिस कैन बी अ विजन। सो देर कैन बी मैनी विजन्स, अनलिमिटेड। सोचो बस हाउ यू कैन सर्व कृष्ण बेटर। यस यू वांट टू से समथिंग।
मैं वो एग्जाम्पल आपको दो चीज है, एक तो एक क्वेश्चन था। तो एग्जाम्पल में प्रभुपाद वो गोले को देख रहे थे, अर्थ के गोले को, और शिष्य को बता रहे थे कि श्याम सुंदर आप वहां जाना, और ये आप वहां जाना, आप लंदन जाना, आप यूके जाना, आप एशिया में जाना। तो वो सब लोग उस समय बहुत छोटे थे, एक साल भी नहीं हुआ था, वो लोग सब मतलब सोच रहे थे कि ये प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, हम लोग कैसे जाएंगे, इन्हीं बने लिए हम कैसे करेंगे। और एक्चुअली बाद में वही हुआ।
मैं तो वही उसको कंटिन्यू कर रहा था एग्जाम्पल को कि एक बार ये राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी जो है गीता नगरी अमेरिका में, तो वहां पर जो राधा दामोदर का जो ड्यूटीज है उनका पहले बस में ट्रेवलिंग करते थे लोग, बस संकीर्तन पार्टी। तो उसमें कुछ आपस में कुछ ड्यूटीज का कुछ ओपिनियन डिफरेंसेस आए थे, तो प्रभुपाद के पास कंप्लेन गई थी और उसके इंचार्ज है तमाल कृष्ण महाराज। तो प्रभुपाद के पास कंप्लेन गई तो प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को कहा कि कंप्लेन से और भक्तों का कुछ अलग इच्छा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम ये राधा को दामोदर संकीर्तन पार्टी जो है वो छोड़ दो। तमाल कृष्ण महाराज व्हाट, अरे उसमें तो मेरे प्राण बसे है, वो मैं कैसे छोड़ दू। प्रभुपाद को ये बात पसंद नहीं आई कि वो क्यों अटैच है संकीर्तन पार्टी से। प्रभुपाद को पसंद नहीं आया बात, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं आप छोड़ दो, वो आपके ऑफकोर्स तमाल कृष्ण बहुत सीनियर थे, तो प्रभुपाद ने उसको डांटा नहीं। प्रभुपाद ने कहा कि वो तुम्हारे फायदे में है, तुम्हारे हित में है, तुम छोड़ दो। तो तमाल कृष्ण महाराज तो आप नाराज हो गया। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा तो क्या मैं संकीर्तन ये सारा संकीर्तन पार्टी छोड़ दूं, तो क्या चाइना चला जाऊं। प्रभुपाद से वाह यस यू गो टू चाइना व्हाट, प्रभुपाद आर यू सीरियस। तमाल कृष्ण महाराज ने ऐसे ही बोल दिया, तो क्या मैं चाइना चला जाऊं। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ दिस इज वेरी गुड आइडिया, तुम चाइना चले जाओ। एंड देन उसको लगे, उनको लगे कि प्रभुपाद मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रभुपाद उनको जानते हैं ना कि प्रभुपाद मैं थोड़ा नाराज हो गया ना, इसलिए प्रभुपाद मेरी से उड़ा रहे। तो क्या मैं चाइना चला जाऊं? तो प्रभुपाद ने कहा चाइना चले जाओ। तो बाद में फिर प्रभुपाद ने कहा कि मैं सही में कहता हूँ कि तुम चाइना जाओ, आई वॉन्ट दैट यू गो टू चाइना। इज इट, आई मीन आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस, यू गो टू चाइना एंड देन यू गो इवन टू चाइना। तुम्हारे समाज चाइना गए, छोड़ दिया संकीर्तन पार्टी। ऐसा नहीं कि मैं इतना मेहनत करके इतना सब खड़ा किया तो क्या हो गया, इवेंट चाइना गए, चाइना में टीचिंग किया। सो दैट्स द पॉइंट। यस आप कुछ कह रहे थे
भक्ति में कुछ लेवल के बाद, जैसे प्रभुपाद जी जो लेवल पे थे तो उस लेवल में भगवान जो कहना चाहते थे वो बोलते थे वो और होता था, या फिर वो बोलते थे उसके हिसाब से भगवान करते थे क्या?
दोनों होता था, क्योंकि मोस्टली भगवान जैसा चाहते थे वही प्रभुपाद बोलते थे। लेकिन अगर प्रभुपाद का अपना कोई इच्छा होता था प्रचार के लिए, सेवा के लिए, तो भगवान उनकी सहायता करते थे, भगवान उनकी इच्छा को मना नहीं करते थे, बिकॉज वो शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त की इच्छा भगवान को स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन ऐसी कोई इच्छा प्रभुपाद नहीं करते कि जो भगवान को स्वीकार ना हो, ये सेकंड वे है कि वो ऐसी इच्छा करते थे कि भगवान उनको पूरी करने में हैप्पी फील करे।
तो क्वेश्चन ये था मेरा, जैसे आपने बताया थिंकिंग फीलिंग विलिंग, तो जैसे कर्म की शुरुआत आपने बोला कि सोचे तब से नींव उसकी रख जाती है, तो वो क्या कर्म का फल मिलता है जैसे हमने कोई विचार किया, या एक्शन का ही फल मिलता है?
कलयुग में एक्शन का फल मिलता है, पहले के युगों में सोचने का फल मिलता था। कलयुग में कैसा है कि अगर आप कोई बुरा सोचते हो तो उसमें आपको डिस्काउंट दे दिया कि उसमें फल नहीं मिलेगा, लेकिन वो रिस्की है। रिस्की इसलिए है क्योंकि वो एक्शन में बदल सकता है। यस, वो एक्शन में बदल सकता है, लेकिन वो फल से आपको, अगर कलयुग में अगर वो पहले वाला सिस्टम अप्लाई कर दिया जाए तो कोई बचेगा नहीं। तो इतने, क्योंकि हम सोच, इतना विचार, इतने विचार आते हैं मन में अलग अलग प्रकार के, और ये विचार अधिक से अधिकतर विचार तो शास्त्र से विपरीत होते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसे विचार होते हैं। तो वो विचार अगर सारे अगर अप्लाई होना शुरू कर दे तो फिर यमराज भी परेशान हो जाएंगे, बोले सब इधर आ गए। ओके, सो टेक्स्ट नंबर 19।
यस, याद आया, वहाँ पे विद्वान में भक्ति महाराज का लेक्चर था, तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई थी कि मतलब कुछ भक्ति और डिवोटिस की बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि प्रहलाद महाराज ने, और उनकी स्टाइल में उन्होंने बोला कि प्रहलाद महाराज ने इतना भगवान को याद किया, इतना मतलब डायरेक्ट नरसिंह भगवान को डाउनलोड कर दिया।
ये नो वे, ये हैज टू कम। ऑफकोर्स महाराज इतना टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के शब्द बहुत यूज करते हैं। यस, ओके, टेक्स्ट नंबर 19।
भक्ति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम विषय नहीं सुनो।
या तात्पर्य पढ़िए, छोटे छोटे तात्पर्य इसमें पढ़ लेता हूँ, फिर पढ़िए।
14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया था कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी है, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं।
यस, सो भगवान ने वो ज्ञान का समय तो कर दिया था, अभी तीन अलग अलग गुणों की जो बात भगवान ने कौन से अध्याय में की थी?
14 अध्याय और 17 अध्याय।
तो ये दोनों अध्याय में भगवान ने बताया था। तो अभी वो तीन गुणों के अंदर में ये सभी आते हैं, जिसमें ज्ञान भी आता है, कर्म भी आता है और ज्ञाता भी अकर्ता। ये तीनों रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अंतर्गत आते हैं। तो पढ़िए नेक्स्ट श्लोक।
ये ज्ञान थी असंख्य रूपों में विभक्त थयेला सर्व जीवों में एक ज अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति जोवामां आवे छे, ते ज्ञान ने सात्विक जाणो।
राजसिक।
नेक्स्ट।
जे ज्ञान थी मनुष्य जुदा जुदा शरीरों में जुदा जुदा प्रकार ना जीवो जीव जुए छे, ते ज्ञान ने तू रजोगुणी जाणो।
जो मैं नेक्स्ट इसलिए बता रहा हूँ, ये जो श्लोक है वो आगे का समरी है, तो इसमें कोई नहीं नहीं, फिर भी जस्ट रिपीट इट अगेन कि अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति अर्थात वो मेरे अंश है, इस तरह से सबको देखता है। तो वो वास्तव में सात्विक ज्ञान से देखता है, अर्थात वो जीव को भगवान का अंश के रूप में देखता है। और रजोगुण में कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है। वो अगर वो ऐसा समझता है कि शरीर के अंदर जैसा कोई व्यक्ति घुस गया तो उसका जीव अलग प्रकृति का है, अलग है, तो वो एक समान भाव से नहीं देखता है। तो उसका तात्पर्य प्रभात कहते हैं कि ये धारणा भौतिक शरीर ही जीव है, मीन्स कुत्ते के बॉडी में अगर जीव गया तो जीव कुत्ता बन जाता है। तो अर्थात क्या हुआ कि वो शरीर और आत्मा का अंतर नहीं समझ रहा है।
फर्स्ट लाइन में वही है
तात्पर्य में, यस। और लास्ट में है, इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, यह कि पृथक आत्मा नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। ये सब धारणा रजोगुण की, अलग अलग धारणा रजोगुण की बताइए। क्या क्या सोचते हैं रजोगुण वाले? ओके, तमोगुण।
और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है।
जो निम्न कोटि का है उसको तात्पर्य बड़ी छोटा है ना।
सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी रहित होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदर्शों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है, उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती, उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसे ज्ञान को यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है, जिस ज्ञान से लौकिक तत्व तथा चिंतन द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म ले वह राजसी है, और शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है।
इस तात्पर्य के अनुसार तो 99% लोग आहार निद्रा भय मैथुन के अंदर है, सब तामसी ज्ञान वाले, राजसी से भी कम, राजसी तामसी, रजोगुण तमोगुण, और सत्वगुण से कोई लेना देना नहीं है उनका। ओके, टेक्स्ट नंबर 23।
જે કર્મ નિયમ થયેલું છે અને જે આસક્તિ રાગ કે દ્વેષથી રહિત અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે।
જ્ઞાન અબ હે કર્મ ઓર ફિર હોગા કર્તા। તો જ્ઞાન સંબંધ જ્ઞાન અભિધેય કર્મ મે આતા હૈ। જ્ઞાન કર્મ ઓર જ્ઞાતા, तो यहाँ पर हम संबंध अविधेय प्रयोजन के रूप में भी इसको देख सकते हो। यह भी अभिधेय ज्ञान कर्म में अभिधेय के माध्यम से आ सकता है। ओके, सो ये था सत्वगुणी क्या सत्वगुणी कर्म कैसा होता है तात्पर्य पढ़िए।
विभिन्न आश्रमों तथा समाज ना वर्णों ना आधारे शास्त्रों ना नियत व्यवसायिक कर्म के जे निष्काम भावे अथवा स्वामित्व ना भाव विना अने तेथी राग द्वेष थी रहित थईने परमेश्वर ने प्रसन्न करवामां आवे करवा माटे आत्मतृप्ति विना कृष्ण भावनामृत थईने कराय छे तेवा कर्म सात्विक कहेवाय छे।
ये आत्मतृप्ति या फिर आसक्ति के बिना किए जाते हैं वो सात्विक कर्म कहलाते हैं। आसक्ति से मुक्त होकर के आसक्ति नहीं होना चाहिए। ओके, टेक्स्ट यस।
तो जैसे ये सात्विक कर्म जो है वो भक्त गण के अलावा भी लोग करते हैं कोई जैसे जिस जिनको आसक्ति नहीं है जैसे
नहीं आई मीन्स अभी नहीं पहले के समय में निष्काम कर्म योग वाले लोग थे लेकिन जैसे हमने पहले बताया कि निष्काम कर्म और भक्ति योग में ज्यादा अंतर नहीं होता है तो और निष्काम कर्म तो अभी भी है हमारे डिवोटीज निष्काम कर्म में है लेकिन बिना कर्म आई मीन बिना आसक्ति के कर्म करने वाले या तो भक्त हो सकते हैं या फिर निष्काम कर्म योगी हो सकते हैं बाकी हमारे योगालय में तो इसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। जो समाज में स्थिर होता है लेकिन वो परमात्मा का उपासक है ब्रह्मवादी है तो वो लोग इस अवस्था तक जा सकते हैं। निष्काम कर्म योगी भी परमात्मा का उपासक हो सकता है वो ब्रह्म का उपासक भी हो सकता है क्योंकि हमने छठे अध्याय में जब हमने पढ़ा तो उसमें जो आठ अंग है अलग अलग अष्टांग योग में तो उसमें पहले जो पांच है वो निष्काम कर्म योग में आते हैं पहले पांच अंग और बाकी के जो तीन है वो फिर ज्ञान योग और अष्टांग योग में आते हैं। तो इसलिए निष्काम कर्म योगी भी ब्रह्मवादी हो सकता है परमात्मावादी हो सकता है और भगवान का उपासक भी हो सकता है भक्त भी हो सकता है।
मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई एक प्रकार के कर्म तो एक व्यक्ति करता नहीं है एक व्यक्ति हर एक प्रकार के कर्म करता है राजसिक तामसिक और सात्विक तीनों कर्म करता है भक्त और अभक्त दोनों कभी कभी तो जैसे कोई अभक्त है भक्त नहीं है तो वो कभी कभी कुछ तो कर ऐसे करता है ना जिसमें उसका अटैचमेंट है जैसे किसी ने कुछ उसने किसी को कुछ दान कर दिया और कुछ अपेक्षा नहीं रखा या कुछ अच्छे कर्म कर दिया तो वो इसी कैटेगरी में आएंगे सात्विक कर्म में आएंगे वो
नहीं क्योंकि उसका अटैचमेंट फल के प्रति इनडायरेक्टली भी हो सकता है। फल के प्रति आसक्ति नहीं होना इसका सीधा अर्थ यही होता है कि वो कर्म करने के लिए कर रहा है। सात्विक प्रभुपाद ने बताया यहाँ पर सात्विक कर्म उसको ही कहते हैं कि जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वामित्व के भाव से मुक्त होकर के है ना अनासक्त भाव से और स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम या घृणा भाव से रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए उसको सात्विक कर्म प्रभुपाद ने बताया। इसलिए अगर इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा कर्म है कि जिसमें उसको आसक्ति नहीं है तो वो सात्विक के उसमें नहीं आता है। क्यों क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं अपनी इच्छा पूर्ति कर रहा है वो जैसे कोई व्यक्ति तिरुपति में दान दे रहा है तो उसमें उसको फल को तो दो वो दान में भी तीन प्रकार के दान आ जाते तो राशि के जो व्याख्या है वो उसमें फिट हो जाएगी जो टेक्स्ट नंबर 24 में है उसमें फिट हो जाएगा वो क्या है
तो इसका मतलब तो यही है कि मतलब जो भक्त है वही सात्विक कर्म करते हैं
yes.
बाकी सब राजसी और तामसी की कर्म
yeah, क्योंकि देखो राजसी में वो उसका डेफिनेशन सेट हो जाता है नेक्स्ट श्लोक में पढ़िए।
लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कहा जाता है।
तो अगर वो इच्छा पूर्ति के लिए नहीं करता है और मिथ्या अहंकार के भाव से वो मुक्त हो जाता है। ये दोनों ही चीज अगर वो कर लेता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली रजोगुण से मुक्त हो गया, तो सत्वगुण में आ गया। तो मिथ्या अहंकार के भाव से वो व्यक्ति तभी मुक्त हो सकता है या इच्छा पूर्ति तभी समाप्त हो सकती है जब वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है, अन्यथा वो उससे मुक्त नहीं हो पाएगा। अहंकार ऐसी वस्तु है कि जो भक्त को नहीं छोड़ती, तो साधारण व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दो, तो रजोगुण में आ ही जाएगा। अभी तमोगुण में कैसा कर्म होता है? नेक्स्ट श्लोक
जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदर्श की अवहेलना करके तथा वादी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है।
तात्पर्य बढ़िया।
मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को जिन्हें यमदूत कहते हैं देना होता है। उत्तरदायित्वहीन कर्म विनाशकारी है क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। यह प्रायः हिंसा पर आधारित होता है और अन्य जीवों के लिए दुखदायी होता है। उत्तरदायित्व से हीन ऐसा कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया जाता है, यह मोह कहलाता है। ऐसा समस्त मोहग्रस्त कर्म तमोगुण के फलस्वरूप होता है।
अधिकतर लोग तो यही कर्म करते रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना, उत्तरदायित्वहीन मिस कोई जिम्मेदारी नहीं लेता वो अपने कर्म। आजकल जो लोग कर्म करते हैं वो कर्म का बिना कोई जिम्मेदारी के कोई शास्त्र का ध्यान नहीं रखते, को पता ही नहीं है उन लोगों के शास्त्र में क्या कहा है क्या नहीं कहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो इतने अज्ञान में है। और कोई उनको जाके बता भी दे कई बार कि ऐसा कार्य करने से तुम्हारा नुकसान होगा, लेकिन वो इतने आसक्त है कर्म के प्रति और पशुवृत्ति जैसा उनका विचार है, इसलिए वो लोग कर्म को त्याग नहीं कर पाते। वो मना नहीं कर सकते अपने आप को, और उनको बोलो कि तुम्हें इससे बड़ा भयानक बंधन लगेगा तो उसको उसकी परवाह भी नहीं होती है। तो लगता है तो लगना है, मुझे क्या होते ना कुछ लोग ठीठ। अब उसको बताओगे कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें ये परिणाम भुगतना पड़ेगा, बोले मैं परिणामों की चिंता नहीं करता।
प्रभुपाद के टाइम में आपको पता होगा, एक प्रभुपाद ने एक लेक्चर में ऐसे बोले थे कि ऐसा करेंगे देन यू विल बी डॉग इन द नेक्स्ट लाइफ। तो एक जन ने उठ के बोला कि उसमें गलत क्या है, मैं कुत्ता बनूंगा। प्रभुपाद ने कहा यू हैव माय ब्लेसिंग्स। तो जो भक्त बता रहे थे मेमोरीज, उन्होंने बोला ये बहुत उसके लिए, उसको पता नहीं है कि शुद्ध भक्त का आशीर्वाद मिल गया तो उसके लिए कितना बड़ा ये खतरा था, बट उसको पता नहीं था।
आपको इसमें भी है ये, एक पत्रकार ने या ऐसे किसी ने पूछा था ऐसा ही कुछ, तो प्रभुपाद को पूछा था कि खाने के लिए जो मांस खाने में क्या बुराई है ऐसे, तो बार बार एक बात को रिपीट कर रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये पशु एनिमल्स के लिए, ये जंगली प्राणियों के लिए है, तो बार बार उसमें क्या बुराई है उसमें क्या। तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है तो तुम्हें नेक्स्ट लाइफ में शेर या बाघ ऐसा कुछ बन जाओगे, नो प्रॉब्लम, आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। सो जनरली द पॉइंट इज कि लोग भविष्य की परवाह किए बिना, ये तो बड़ी बड़े होते लोग इतनी निम्न कोटि के आ गए, समझ लो कि जैसे उनको कहना पड़े ऐसे कैंपेन बनाना पड़े, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ बाइक चलाओ, क्यों अगर नहीं रहोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, हमें नहीं चाहिए, भले हो नुकसान होगा तो होगा। इधर छोटी बात के लिए कैंपेन करना पड़ता है, छोटी बात के लिए। अभी उसको बोलो कि भाई तुम ये करोगे जिसका पाप लगेगा, तो पाप को तो पाप शब्द से तो परेशान हो जाता है, पाप और पुण्य को तो विश्वास ही नहीं करता है। नहीं वो क्या होता है पाप और पुण्य, दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। इतने मूर्ख है, इतने तमोगुण में फंसे हुए है, उनको कोई अच्छा बुरा कोई उसको रिजल्ट पड़ी नहीं है। सो इस प्रकार के लोग कैसे होते हैं, हिंसा करने वाले, हिंसा बिना कोई कारण से। अतः ये टेररिस्ट लोग खत्म कर दे, भाई तुम्हारा क्या विकार था उसने, ना तुम्हें पहचानता है, ना उसने तुम्हें कोई बिगाड़ा है, ना वो तुम्हें कोई डांटा, एक दूसरे को जानते तक नहीं, फिर भी उसको खत्म कर दिया तुम, मार डाला। क्यों मार डाला? कोई कारण? एक कारण तो बताओ। तो कोई कारण नहीं, बस आतंकित करना है सबको, दैट्स इट। तो ऐसे लोग और अन्य को दुख पहुंचाने के लिए मोहग्रस्त होते हैं। तो ये हुए तीन प्रकार के कर्म। अब भक्तों के कर्मों के विषय में बताया है सहकर्ता, पढ़िए 26।
जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता तथा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है।
तात्पर्य पढ़िए।
कृष्ण भावनामय व्यक्ति सदैव प्रकृति के गुणों से अतीत होता है, उसे अपने को सौंपे गए कर्म के परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, क्योंकि वह अहंकार तथा घमंड से परे होता है। फिर भी कार्य के पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है, उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सदैव उत्साह पूर्ण रहता है, यह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है, ऐसा करता सात्विक है।
हाँ। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर समझ लो कि हमें सात्विक बनना है, हमारे लिए अगर ये श्लोक बोला गया मेरे पर, तो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना कर्म करता है वो, प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त होकर के, अहंकार से मुक्त होकर के, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक संकल्प करके कि मैं ये चीज को प्राप्त कर ही लूंगा, और उसको अचानक से प्राप्त नहीं होती वो चीज ऐसी, तो उसको नियमित रूप से उत्साह रखना। भाई उत्साह में कैसा होता है कि अगर आपके संकल्प सिद्धि को 10 साल की आवश्यकता है, 10 साल तक अगर कर्म करोगे तब जाके आपको ये फल मिलने वाला है, तो 10 साल में पहले 2-3 साल तो उत्साह बहुत होता है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, फिर धीरे 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 उत्साह डाउन हो जाता है। तो कई बार आप देखते हो कि 10-10 साल के बाद भी भक्त होते हैं उनका उत्साह नहीं होता है कोई। अब 10-20 साल पुराने भक्त के पास जाओ, अगर आप बहुत एंथुसियास्टिक हो, लेकिन उनसे बात करने से आपका उत्साह कम हो जाए, वो सब नेगेटिव बात करे, तो आपको उत्साह बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं कि जिनका उत्साह मर गया होता है, क्योंकि उत्साह ऐसी वस्तु है कि उसको हमेशा बनाए रखनी पड़ती है, अगर वो उत्साह नहीं रहता है तो सिद्धि नहीं प्राप्त होती है हर एक कार्य के लिए। प्रभुपाद यहां तक कह रहे हैं कि चलने के लिए भी उत्साह चाहिए, खाने के लिए भी उत्साह चाहिए। अगर आपको भोजन लेना है तो आपको उत्साह होगा तो ही भोजन ले पाओगे आप। अगर आपको चल के 10 कदम दूर जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खड़ा होना पड़ेगा, है ना, आपको शरीर हिलाना पड़ेगा, पांव हिलाने पड़ेंगे। कुछ लोग होते हैं ना आलसी, 10 कदम दूर जाना पड़ेगा, छोड़ो नहीं जाना है। तो हर एक चार्य के लिए उत्साह चाहिए।
उनका उत्साह कम क्यों हो जाता है?
उत्साह कम हो जाता है क्योंकि उनमें धैर्य का अभाव होता है। धैर्य का अभाव होता है और तमोगुण का प्रभाव होता है, आलस्य, इसके कारण उनका। और विशेष करके अगर भक्तों के विषय में देखा जाए तो उसमें अनर्था मुख्य रूप से कार्य करते। तो इसके कनेक्शन में देखो यहाँ पर है ना, सफलता या असफलता में अविचलित रहता है क्योंकि उसमें धैर्य चाहिए। अगर हो सकता है कि उसके पहले प्रयास में विफल हो जाए, जैसे प्रभुपाद गए थे तो 1 साल तक बौरी में निरंतर प्रयास करते थे, कोई सुने नहीं सुने, कभी कभी कोई मिलता कभी नहीं मिलता, कभी उसके पहले यहाँ झांसी में भक्त संघ बनाया तो उसमें भी समस्या आई थी, फिर उनके गुरु भाइयों से सहायता मांगी तो उन्होंने भी कोई सहायता नहीं दी, यहाँ तक कि प्रभुपाद ने जैसे थोड़ा प्रचार शुरू हुआ तो प्रभुपाद ने तुरंत लेटर लिखा अपने गुरु भाई को कि यहाँ पर प्रचार की बड़ी होप दिखाई दे रही है और ये प्रचार हो सकता है, आसान है, तो तुम मुझे इतना इतना सहायता भेजो तो ये प्रचार हो जाएगा, है ना। तो वहां पर भी और प्रभुपाद जब लिखे ना तो उनके पूरा उत्साह से भरा हुआ था प्रभुपाद का लेटर, ऐसा लगता था कि प्रभुपाद को बहुत आशा थी कि अपने गुरु भाई उनको हेल्प करेंगे, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं किया। तो एक्चुअली भगवान का इच्छा था, क्योंकि प्रभुपाद अकेले इसको कार्य संपन्न करे, ऐसा भगवान चाहते। द पॉइंट इज कि सफलता असफलता से विचलित नहीं होते भक्त लोग, दे शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय जो कुछ उनको, क्योंकि सफलता और विफलता तो उनके हाथ में है ही नहीं ना। वी शुड नॉट, भक्ति आलोक में लिखा है, वी शुड नॉट लूज एंथुजियाज्म बिकॉज वी हैव नो स्ट्रेंथ टू डिस्ट्रॉय द रिएक्शन ऑफ कर्म। हमें हमारा उत्साह कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म के परिणाम को नष्ट करने में हम सक्षम नहीं है। हमारे जो कर्म है उसका परिणाम हम नष्ट नहीं कर सकते। शुरुआत से ही उसकी श्रद्धा स्थिर होनी चाहिए। अभी मैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबिनी करके बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें इस बात का चर्चा है, तो मैं सोचा कि आपको उसका एक अंश छोटा सा चर्चा करें। माधुर्य कादंबिनी करके बहुत बड़ा सुंदर ग्रंथ है, उसमें आपने वो तो आपने पहले नौ अध्याय में तो सुना है कि आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन कर, ये सुना है आपने राइट, किसी को याद है पूरा थोड़ा बहुत याद है, आदव श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया थोड़ा बहुत, या यू नो एंटायर, लेकिन और किसी को थोड़ा बहुत याद है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो इफ यू रिमेम्बर एंटायर देन लेट देम लिस्ट देम आउट, वो अपने पेपर में लिस्ट करके इसको याद रख लेना। गो अहेड, एवरीवन शुड लिसन,
आदर श्रद्धा तथा साधु संग,
पहला क्या होता है, वन
बाय वन, श्रद्धा,
यस
श्रद्धा,
वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन इन वन, वो एक शब्द एक्सप्लेन दैट वन लाइन।
पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए कि हम भक्ति में, हमें श्रद्धा होना चाहिए शास्त्रों में, गुरु के आदेश में, सभी चीजों में। फिर आता है साधु संग, फिर हमें श्रद्धा जैसे हमारी स्थिर होती है, फिर हम डिवोटीज का एसोसिएशन, साधुओं का संग करते हैं, फिर भजन क्रिया होती है, फिर हमारा दीक्षा होता है, हम भवन का ना कीर्तन करते हैं, जप करते हैं वगैरह, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर सब अनर्थ धीरे धीरे चले जाते हैं। फिर निष्ठा, फिर हमारा जो फेथ है थोड़ा स्ट्रांग होता है, कन्विक्शन होता है कि भगवान, मतलब हमारे भक्ति में हम एक निष्ठ होते हैं। फिर रुचि आती है, फिर हमें कृष्ण कथा में, भगवान के भक्ति में, भक्तों के समय सभी में रुचि आती है। फिर होती है आसक्ति, फिर उसके बाद आसक्ति आ गया, हमें अटैचमेंट हो जाता है कि हम मतलब उसके बगैर रह नहीं पाते। फिर आती है भाव, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर हमें मतलब अलग अलग हमें भाव आते हैं, हम कभी आंसू निकल आते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं वगैरह, और फिर लास्ट में प्रेम, फिर पूर्ण भगवान का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। तो ये भक्ति
का, तो ये आपने स्वयं पढ़ा था पहले नौ अध्यायों में, ये था आदव श्रद्धा तथा साधु संग सब भजन क्रिया। तो ये हमें सीखना चाहिए कि हम सब, हमारी ये प्रोसेस है, हम जब कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो यहीं से शुरू होता है हमारा लाइफ। श्रद्धा, थोड़ा बहुत श्रद्धा होता है इसलिए हम भजन क्रिया करते हैं। भजन क्रिया में एक माला, दो माला, तीन माला, चार माला, फिर सोलह माला, चार नियम का पालन, फिर साधु संघ, पहले श्रद्धा फिर साधु संघ होता है। साधु संघ में कोई आपको कहता है कि आपको ये करना चाहिए, और ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेप था श्रद्धा का, अब हम साधु संघ में, अभी श्रद्धा आउट अभी साधु संघ शुरू हुआ, और जैसे ही मैंने भजन क्रिया शुरू किया, सोलह माला शुरू किया, तो साधु संघ आउट अब साधु संघ की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सोलह माला तो शुरू कर दी मैंने, चार नियम तो पालन हो गया। कई बार देखा जाता है भक्तों में, जब तक दीक्षा नहीं लेता तब तक बिल्ली रहता है, बिल्ली की तरह रहता है, जैसे ही दीक्षा उसको प्राप्त हो जाता है शेर बन जाता है, तो फिर वो सोचता है कि मुझे साधु संघ की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है,
ज्यादा
आवश्यकता होती है क्योंकि उस समय तो माया परेशान करनी शुरू कर देना। ऑफिशियल डिक्लेरेशन दीक्षा के टाइम पे आप पब्लिक अनाउंसमेंट करते हो कि मैं अब कृष्ण की शरणागत हूँ, माया तुम्हें जो करना है कर लो।
ओपन चैलेंज,
माया ओपन चैलेंज। दीक्षा के टाइम पे ओपन चैलेंज आती है पब्लिक में, अग्नि के सामने, कैमरे के सामने, डीटीज के सामने, सबके सामने होता है बोले तुम्हारा दीक्षा हुआ ऐसे। तो उसमें तो और सावधान रहना चाहिए साधु संघ। फिर अनर्थ निवृत्त, अनर्थ निवृत्त में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज होती है जिसको अनर्थ या अनवांटेड, जो हमारी कमियां है, हमारी त्रुटियां, हमारे आचरण में, हमारी सोच में बहुत सारी चीजें ऐसी फंसी हुई है, जैसे अपराध करने की वृत्ति, आसक्ति होती है, भोग की इच्छा है, इंद्र तृप्ति की इच्छा है, तो ये सारी चीजों को अनर्थ में आता है। तो ये अभी क्या, वो भजन क्रिया श्रद्धा शुरू हो गई, साधु संघ भी शुरू हो गया, भजन क्रिया शुरू हो गया, अनर्थ निवृत्ति भी शुरू हो गया, उसके बाद फिर निष्ठा, कहीं समय के पश्चात निष्ठा आती है। लेकिन ये नहीं सोचना कि निष्ठा, जैसे मैंने पहले बताया निष्ठा ये तो इसका अर्थ अनर्थ निवृत्ति समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता। ये प्रोसेस चालू है, अनर्थ निवृत्ति धीरे 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 समाप्त होती है। जो निवृत्ति शब्द है, निवृत्ति शब्द का अर्थ होता है कि उससे मुक्ति, तो वो अचानक नहीं आती है। अनर्थों की समाप्ति होते 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 तो आप निष्ठा में पहुंच जाते हो, फिर भी अनर्थ कुछ अनर्थ बच जाते हैं, रुचि में भी कुछ अनर्थ बच जाते हैं, ऐसे अनर्थ बच जाते हैं। तो इससे साइंस उसकी चर्चा करेंगे बाद में कभी। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबिनी में इसी विषय को विस्तार से बताया है। तो दो प्रकार की भजन क्रिया उन्होंने बताई है, जैसे आदोशुद्ध तो साधु संग्रह, उसमें भजन क्रिया आती है। तो भजन क्रिया में दो प्रकार की आई है, जो अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया के बाद आता है ना, तो अनर्थ
फोर्थ,
हाँ, तो भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति के साथ साथ ये बीच में दो प्रकार की भजन क्रिया ही इज मेंशन। एक होता है निष्ठिता और निष्ठिता, निष्ठा होती है ना उसके आधार से निष्ठिता, निष्ठा वाला, और दूसरा एक भजन क्रिया होता है अनिष्ठिता। ठीक है, यह है प्रसाद, प्रसाद दूसरा होता है अनिष्ठिता, एक होता है निष्ठिता, दूसरा होता है अनिष्ठिता। जो निष्ठिता का अर्थ होता है स्थिर, और अनिष्ठिता का अर्थ होता है चंचल, जो चंचल होता है उसकी भजन क्रिया। सो जो अनिष्ठिता है, जो चंचल है, उसके छह लक्षण उन्होंने बताए हैं। ये आपने शायद पहले सुना होगा कहीं पर, छह लक्षण बताए अनिष्ठिता के। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने आप में ये हम कहां पर है इसमें। तो इसमें पहला है उत्साहमयी, उत्साहमयी
अनिष्ठिता के,
अनिष्ठिता
चंचल,
चंचल में आता है ये अनिष्ठिता, उसमें है उत्साहमयी। उत्साहमयी में क्या आता है, फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है उसमें। फॉल्स कॉन्फिडेंस का अर्थ क्या होता है, समझ लो कि कोई एक ब्राह्मण बच्चा है और उसने अभी अभी शास्त्र का अध्ययन शुरू किया है, और जैसे उसने शुरू किया उसने तुरंत सोचने लगा कि वो एक्सपर्ट हो गया है और लोगों को उसका वखान करना चाहिए, लोगों को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वो ऐसा, इसी तरह से उस समय में कैसा होता है कि भक्त थोड़ा भक्ति शुरू करता है, दीक्षा थोड़ा ले लिया क्या, या फिर उसने भगवद्गीता पढ़ लिया, सोलह माला शुरू कर दिया, फिर मंगला आरती जाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी कर लिया, थोड़ा सेवा किया, थोड़ा भक्ति में जुड़ा, तो वो ऐसा सोचने लगता है कि उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, मास्टर कर लिया सब कुछ। तो ये उसकी अनिष्ठिता, तो पफ्ड अप हो जाता है। उत्साहमय क्यों इसलिए कहेंगे, उत्साह के साथ पफ्ड अप हो जाए, उसमें उत्साह से अहंकारी हो जाता है। हैव यू सीन सच डिवोटीज, ऐसे भक्तों का अपना देखा होगा, है ना, या फिर हम हमारे अपने में भी जब हम नए नए थे थोड़ा बहुत किया तो कई बार हम अपने आप को क्या समझ बैठते हैं कि मैं कितना विद्वान हूँ, मैं कितना बाकी सब भाई तुम सब तुच्छ हो, मटेरियल वर्ल्ड तुम लोग तो सब बेकार हो, कोई रिलेटिव आता है वह तुम लोग को क्या, तुम तो मूर्ख हो, तुम्हें तो अज्ञान, तुम्हें कुछ आता नहीं जाओ। हालांकि उसको खुद को भी कुछ नहीं आता है, वो भी नए नए जुड़ा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। इसको कनिष्ठ भक्त जनरली ऐसा होता है, कनिष्ठ अधिकारी इस प्रकार से होता है, वो जनरली खाली घड़ो आगे घड़ो, उसमें कुछ ज्यादा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत एक्सपर्ट मानता है, तो ये उसकी समस्या एक्चुअली। दूसरा होता है घन तरला, सेकंड वही बच्चे का एग्जांपल अगर हम यूज करें तो कभी कभी अपने अध्ययन में बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, और कभी कभी क्या होता है कि शास्त्र को समझ नहीं सकने के कारण, या तो फिर उसको रुचि नहीं होती है उसके कारण कभी नहीं पढ़ता है, कभी बहुत पढ़ लेता है कभी बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो इसी तरह से नया भक्त कभी कभी नवदा भक्ति के अलग अलग अंगों को अच्छे से करता है, अचानक से उसका जो ग्राफ होता है ऊपर चला जाता है, अचानक से प्रभु मंगल आरती भी आ रहा है, भागवत में भी बैठ रहा है, गुरु पूजा में भी आ रहा है, चैंटिंग सुन रहा है, सारे फेस्टिवल अटेंड कर रहा है, सारी सेवा में, फिर अचानक से छू पता नहीं कहाँ चला गया, कई दिन मंगल आरती नहीं की, कई दिन माला का जप नहीं किया, ऐसा। तो इसलिए कई बार निग्लिजेंस हो जाता है उसका, अब समझे ना, डिवोटी ऐसा होता है कई बार वो भक्ति में बहुत ज्यादा भक्ति वाला हो जाता है, वो उसको खुद को लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना सारा सेवा कर रहा, लेकिन बाद में क्या होता है कभी कभी अचानक से बस सब, अब थोड़ा मटेरियल, अब थोड़ा भौतिक कार्य करे, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हो गया है, थोड़ा भौतिक करे, या फिर एक सेचुरेशन आ गया, बस इससे आगे वो कुछ कर नहीं पाता, तो उसको वहां पर स्थिर होना चाहिए था, इसके बदले वो सीधा वापिस चला गया। तो कभी बहुत ज्यादा भक्ति करता है और कभी कुछ भी नहीं करता, ऐसा नहीं कि भाई 16 तो 16, कभी 64 कर देगा, कोई कभी एक भी नहीं करेगा, तो वो इसको बोलते हैं घन तरला, घन तरल मीन्स कभी थिक कभी थिन, कभी मोटा हो जाता है कभी पतला हो जाता है। फिर तीसरा है व्यूढ़ विकल्प, व्यूढ़ विकल्प में क्या होता है कि वो कंफ्यूजन में रहता है, जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में रहूं या गृहस्थ आश्रम में रहूं, ये सेवा करूं या फिर वो सेवा करूं, संन्यास ले लो वृंदावन में रहने चले जाऊं या फिर यहीं पर अपनी कार्य को कंटिन्यू करूं, पहले अच्छे से भोग कर लूं फिर अच्छे से साधना में जुड़ जाऊंगा, पहले थोड़ा इंद्र भोग कर लूं, अभी नई नई शादी हुई है तो 2-4 साल ऐसे मटेरियल लाइफ एंजॉय कर लेते हैं, फिर स्पिरिचुअल लाइफ में चला जाऊं, बाद में सोचता है कि नहीं शादी हुई है नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, पहले अभी से ही जुड़ जाऊं भगवान की सेवा में, तो ये सब क्या हुआ, कंफ्यूजन हुआ, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, कंफ्यूजन होना गलत नहीं, लेकिन उसके अंदर पड़ा रहना, उसी चीज के अंदर वो घूमता रहता है और डिसीजन नहीं लेता है, तो व्यूढ़ विकल्प पर फंस जाता है, तो उसकी भक्ति इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, इनडिसीजन बोलते हैं इसको। फिर चौथा है विषय संग्रह, संग्रह विषय संगठन में क्या होता है कि इंद्रियों के आवेगों को सहन करने में संघर्ष, उसको संघर्ष इंद्रियों के साथ संघर्ष होता है। वो देखता है कि भौतिक इच्छाएं उसकी इंद्रिय भोग की जो कामना है, तीव्र कामना है, वो भगवान की सेवा के प्रति उसको अस्थिर बना देता है। उसको पता है, वो समझता है, ये जानता है कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ कर नहीं पाता। और कभी कभी वो ऐसा निर्णय भी करता है कि अब बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत इंद्रिय तृप्ति कर ली मैंने, बहुत मैंने इसको अब नहीं करूंगा, छोड़ देता है, अब भगवान का शरण लेता हूं। लेकिन फिर भी परिणाम क्या आता है कि वो इंद्रिय तृप्ति में फंस जाता है। जैसे श्रीमद भागवतम का एक रिफ्लेक्शन है इसके ऊपर, हैविंग अवेकन फेथ इन टॉपिक्स अबाउट मी, भगवान खुद कहते हैं कि मेरे विषयों में, मेरे विषय में श्रद्धा का उसका उदय हुआ है और भौतिक कार्यों के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के प्रति उसका डिस्गस्टिंग या मीन्स वो अरुचि हो गई है उसको, और ये भी जानता है कि इंद्रिय तृप्ति से दुख होने वाला है, दुख प्राप्त होता है, ये समझ जाता है वो, फिर भी अनेबल टू गिव अप हिज डिजायर्स। आप समझे ना, जैसे उसको पता है कि यही सही है, ये गलत है, और इसमें मेरा नुकसान, इसमें मेरा लाभ है, और कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ उत्तम नहीं है, लेकिन वो इच्छा को त्याग नहीं कर पाता है। अनेबल टू गिव अप हिज डिजायर। और फिर अगेन कभी कभी उस पर फंस जाता है और दुखी भी होता है, लेकिन उसको शोक भी होता है, रिपेंटिंग होता है, उसको अफसोस भी होता है कि गलती हो गई, ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना, वो बार बार सोचता है। तो ऐसा, अगर ऐसा कोई भक्त है तो उसको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए उसको मेरी प्रेम में सेवा करने में, मेरी श्रद्धा के साथ मेरी सेवा करने में उसको स्थिर रहना चाहिए। तो ये उसकी जो संघर्ष है इंद्रियों के साथ का जो संघर्ष है उसका निरंतर, उसकी पूर्व आदतें कुछ होती है उसके कारण वो परेशान रहता है, तो कभी कभी वो जीत जाता है इंद्रियों को और कभी कभी हार जाता है इंद्रियों के सामने, इसलिए इसको बोलते हैं विषय संग्रह।
संघर्ष,
हाँ अभी संघर्ष है, लेकिन इट मस्ट बी संघर्ष, आई हैव टू ओपन माधुर्य का दो मिनट, बट दिस इज इन नोट्स, संघर्ष इन इंग्लिश इट इज मेंशन SANGAR संघर्ष, या फिर इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए विषय का संग करने वाला, विषय का संग करने वाला, मीन्स वो विषयों का वो छोड़ नहीं पाता है विषयों को। तो ये हम सब देखते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे। उदाहरण देते हैं कृष्ण कितने तरीके उपयोग करते हैं सिखाने के लिए, किसी के लाइफ को दिखाते हैं, अपनी लाइफ को दिखाते, खुद की, हमारे अपनी लाइफ में कुछ समस्या आती है, फिर कभी कभी भगवान अचानक से बहुत बड़ी कृपा कर देते हैं, ये सोच करके शायद इसको इतनी कृपा दे दूंगा तो वो अप्लाइज होकर के फिर छोड़ देगा कि भगवान ने मुझ पर इतना सारा कृपा कर दिया, अब तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि बहुत बड़ा कृपा कर देते, लेकिन वो बड़ी, बहुत बड़ी कृपा के बाद भी वो सुधरता नहीं कई बार, क्योंकि वो उस अवस्था से मुक्त नहीं हो पाया, इंद्रियों की तृप्ति फंस ही जाता है, उसका मन फंस जाता है उसके अंदर बार बार। कभी भगवान ऐसे कृपा करते, कभी कठोर उसको पनिशमेंट देते, बहुत बड़ा झटका दे देते। जस्ट उद्देश्य यही है कि वो ठीक हो जाए, अपने आप को संभाल ले। फिर भी वो नहीं संभाल पाता अपने आपको, कई बार बहुत कृपा होता है, कई बार झटका हो जाता है, कई बार उससे कुछ सेवा छीन ली जाती है, कोई सेवा कर रहा है वो सेवा उससे छीन लिया जाता है, जस्ट टू टीच हिम, उसको सिखाने के लिए, कभी कभी ऐसा होता है, इस जीवन में, और कभी बहुत ज्यादा सेवा दे दी जाती है, ऐसी ऐसी सेवा दी जाती है कि किसी को और को प्राप्त नहीं होती, ऐसी सेवा उसको मिल जाती है, तो ये सब भगवान कृपा करते हैं, इस तरह से अलग अलग तरीके यूज करते हैं ताकि उसका संग नष्ट हो जाए विषयों का, लेकिन वो कहीं कई बार जीत जाता है तो कई बार हार जाता है, कई बार तीन तीन महीने तक ठीक हो जाता है, तीन महीने तक वो फंस अच्छा आचरण किया लेकिन बीच में फिर एक महीना डिस्टर्ब हो गया, फिर वापस छह महीना तक उसने अच्छा आचरण किया, वापस एक महीना डिस्टर्ब हो गया, लेकिन तो ये धीरे 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 फिर छह महीना, साल भर, दो साल, पांच साल, इस तरह से इम्प्रूव होता जाता है, क्यों दो साल तक अच्छा रहा फिर बीच में अटक गया, फिर कभी पांच साल तक उसने अच्छा मेंटेन किया भगवान की सेवा, फिर डिस्टर्ब हुआ, और कभी कभी दस साल, और फिर ऐसे ऐसे आदत पड़ गई तब उसको ऐसे डिस्टर्बेंस आती ही नहीं है लाइफ में, तो उससे मुक्त हो गया, थोड़ा बहुत जो बचा है वो फिर भगवान डिलीट मार देंगे तो कृष्ण हेल्प दैट वे,
क्योंकि आपके उसके बगैर तो किसी का कुछ हो ही नहीं सकता बिकॉज अभी कलयुग में एटलीस्ट मेरा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं सेंट पर्सन, जैसे प्रभुपाद ने बताया था सेंट पर्सन, सर मेरा सेंट पर्सन तो कैसे पॉसिबल है, फिर प्रभुपाद ने कंसेशन
दिया, बाकी भी कृष्ण कर देते हैं, एक्चुअली पहले दिन से ही कृष्ण ही हेल्प करते हैं हमें, बट ओनली थिंग हेल्प तब मिलती है जब प्रयास होता है, एक्चुअली कृष्ण भक्ति बड़ी आसान है, आप चाहो तो इसी समय आप मुक्तात्मा बन सकते हो, करना केवल इतनी है कि आपने जो सुना है उसको बिना कोई आसक्ति से एग्जीक्यूट कर दो तो हो गए खत्म, कोई आसक्ति सारी छोड़ दो, सब प्रकार का मोह त्याग कर दो, सब प्रकार का जो स्टॉप्स ऑब्स्टेकल्स वो हटा दो, और जो बोला है 100% वैसा कर लो 100% और कंटिन्यू करो, यू विल बी शुद्ध भक्त, दैट्स एज इट, एज सिंपल एज दैट, ओनली थिंग इज दैट प्रयास आपको करना पड़ेगा बस, फिर देखो कृष्ण क्या करते हैं, वो चमत्कार करेंगे आपको, ऐसा 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 कर दिया, ऐसा मैं तो इतना तुच्छ हूं, मैं तो इतना निकम्मा हूं, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी को कोई काम में नहीं आ सकता ऐसा आदमी हूं, लेकिन मैंने थोड़ा प्रयास किया और कृष्ण ने मुझे इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, सेवा में ऐसे, क्यों थोड़ा प्रयास किया इसलिए, इसलिए ये थोड़ा हो सकता है अप एंड डाउन, बट यू शुड कीप डूइंग इट, देन इट इज पॉसिबल, फिर है नियम क्षमा, नियम अक्षमा, नियम अक्षमा का अर्थ क्या होता है, कोई नियम बनाने में अक्षम,
इनकेपेबल,
या इनएबिलिटी, आज से मैं रोज भोजन लेने से पहले 16 माला कर लूंगा yeah. एक दिन हो गए, दूसरे दिन हो गई, तीसरे दिन दो प्रसाद ले, प्रभु जी आपका माला हो गया आज ही बाकी है yeah. तो कोई नियम का पालन नहीं कर पाते ऐसे कि मैं आज से रोज 50 बार दंडवत प्रणाम करूंगा, या आज से मैं ये कार्य करूंगा, आज से वो नियम बनाते, लेकिन वो फॉलो नहीं कर पाते उसको, मैं अब कभी गॉसिप में नहीं फंसूंगा, अब मैं वो कार्य नहीं करूंगा, बाद में फिर अंत में क्या होता है कि वो इसमें रहता है ना नियम में, कई बार हम लोग ब्रह्मचारी जी को कई बार मजाक करते हैं युद्ध नियम अक्षमा, तो क्या होता है, बोले आज से ये करूंगा, फिर वो थोड़े दिन चलता है, नहीं करता है, आज से ये करूंगा, थोड़े दिन चलता है, बंद हो जाता है, तो फिर बाद में वो आता है, आज से मैंने एक नया नियम बनाया है, क्या आज के बाद कोई नियम नहीं आज के बाद कोई नियम नहीं, सो वो यूथ का लेक्चर 31st का होता है ना, 31st दिसंबर का, दैट टाइम आई यूज टू गिव दिस एग्जांपल, द न्यू रेजोल्यूशन दैट आई विल नॉट टेक एनी रेजोल्यूशन फॉर दैट, बट वेल डिवोटीज कई बार इस तरह से फंस जाता है, लेकिन दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज विषय संग्रह. थोड़ा अंतर है इसमें, विषय संग्रह में क्या कि वो मटेरियल अटैचमेंट से दूर नहीं भाग सकता, और नियामक समय में क्या होता है कि वो अपनी साधना को इम्प्रूव नहीं कर पाता है, ये डिफरेंस है उस दोनों के बीच में. कि वो चाहता है कि मैं रोज मंगल आरती करूंगा, लेकिन एक दो दिन करता है फिर बंद कर देता है, ऐसे लाइक दैट. तो नियम अक्षर. और फिर छठा है तरंग रंगिनी. तरंग रंगिनी में क्या होता है, भक्ति के द्वारा प्राप्त हुए सुख में फंस जाना. क्योंकि भक्ति अपने आप में बड़ी आकर्षक है, और जैसे आप भक्त बन जाते हो तो बहुत सारे लोग आपसे आकर्षित हो जाते हैं,
फेम वगैरह सब,
लाभ पूजा प्रतिष्ठा, तो इसमें आप फंस जाते हो. आपको बहुत सारे सुविधा प्राप्त होता है, कई बार आप भक्ति में जुड़ते हो तो लोग आपको दान दक्षिणा देते हैं, यू नो एनवेलप में आपको रोकड़ा पैसा दे करके आपको दान देते हैं, क्या हमारे आप भक्त हो, इतने बड़े भक्त हो, दक्षिणा हमारी ओर से. फिर लाभ भी आपको पूजा देते हैं, कुछ लोग आते हैं आपको प्रणाम करते हैं, आपका गुणगान गाते हैं, आपको गुरु जी कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं, तो इससे क्या होता है आपको पूजा प्राप्त होती है. उसका उसका बर्थडे होगा तो आपका आशीर्वाद लेने आएगा, फिर वो आपसे केक कटवाएगा, तो ये सब क्या हुआ, रिस्पेक्ट, यू नो, इससे आपको लाभ या प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा बढ़ जाती है आपकी. तो ये सारी भक्ति के क्रीपर्स है, जो अनवांटेड क्रीपर्स उग जाते हैं. वास्तव में ये भक्ति के दुश्मन है, भक्ति को कम, ये भक्ति के शत्रु है, ये सब इसको हटाना पड़ता है. ये बड़ा आसान है, बहुत सारे भक्ति इसमें फंस जाते हैं. कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि भाई ये तो इतना अच्छा है, सेवा की सेवा भी बनी रहेगी, भगवान का सेवा भी करते रहो और अपना लाइफ भी निकल जाएगा इसमें. तो भगवान आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं, आपके लोभ की पूर्ति नहीं करेंगे. अगर आप भक्ति का उपयोग लोभ की पूर्ति के लिए शुरू कर दिया, आप मटेरियल अपुलेंट बनना चाहते हो मटेरियली जस्ट फॉर भगवान की सेवा का नाम दे करके, दीज आर द वीट क्रीपर्स. आप समझे ना, लोग आपको कुछ, आप लोग आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आप उसका शोषण नहीं कर सकते. शिक्षा गुरु अपने आप को घोषित कर दो कि मैं शिक्षा गुरु हूं तुम्हारा, तो ऐसा बोल करके तुम उसका शोषण नहीं कर सकते हो कि अब मैं जैसा करूं वैसा करो. तो ये लाभ पूजा प्रतिष्ठा के माध्यम से ये होता है. तो ये होता है तरंग रंगिनी. तरंग सीकिंग वॉन्स प्लेजर रंग अमिडस्ट वेव्स लाइक फसल वीज विच आर बट स्मॉल वेव्स इन द ओशन ऑफ भक्ति. तरंग छोटे छोटे तरंग आते हैं भक्ति में, छोटे लहरें, छोटी लहरें, देयर इज तरंग रंगिनी. भक्तिवंत ठाकुर इसके ऊपर कहते हैं कि बाय एंथुजियास्टिकली परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस वन कैन गिव अप अनिष्ठिता सर्विस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. उत्साहपूर्वक उत्साह से भक्ति का आचरण करने के माध्यम से इस छह प्रकार की जो अनर्था है, जो भजन क्रिया है अनिश्चितता, उससे मुक्त हो सकते हैं. शुरुआत में निष्ठा नहीं होती क्योंकि हृदय अनर्थों के ग्रस्त होता है, लेकिन सब अनर्था उत्साह से की गई भक्ति से अनर्थ निवृत्ति प्राप्त की जा सकती है. जो डिवोशनल से जब उत्साह से करते हो तो उससे अनिश्चितता भजन क्रिया अनिश्चिता भजन क्रिया से उत्साहपूर्वक की गई भक्ति से अनिश्चिता भजन क्रिया से मुक्त हो सकते हो और निश्चित भजन क्रिया पर स्थिर हो सकते हो. और जब अनर्था आपके सब प्रकार के नष्ट हो जाते हैं तब आपकी भक्ति निष्ठा में प्रवेश करती है. निष्ठा। हाँ, कई बार इसको सरल भाषा में ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब भक्त कोई निष्ठा में आ गया, निष्ठा के स्तर पे, फिर उसका पतन नहीं हो सकता। मोस्ट लाइकली आई मीन देयर इज वेरी लेस चांस। निष्ठा और स्थिर होगा उसको, आप चाहे कितना प्रलय आ जाए फिर भी वो कृष्ण भक्ति को छोड़ेगा नहीं। निष्ठा उसी को बोलते हैं, स्थिर हो गया, स्टडी स्थिर हो गया वो। लेकिन जब तक वो निष्ठा तक नहीं पहुंचा तो कोई भी बड़ी घटना या कोई भी ऐसी कोई भी घटना बन सकती है उसके जीवन में कि जो उसके पतन का कारण बन सके, क्योंकि अभी तक वो निष्ठा में स्थिर नहीं हुआ है। तो अलग अलग प्रकार के अंधविश्वास से ग्रस्त है वो। सो इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो इस प्रकार के उससे मुक्त होने के लिए, भक्त भजन क्रिया से मुक्त होने के लिए सबसे पहले निकल जाए उसमें से, तमोगुण में से, और उत्साहपूर्वक उत्साह से भक्ति में जुड़े। उसको एंथुजियास्टिक बनने का दृढ़ संकल्प रखना चाहिए कि मैं उत्साह बनाए रखूंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। कभी कभी कसौटी होती है उत्साह की, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वाइब्स उत्साह के विरुद्ध जाता है, या फिर आप नेगेटिव वाइब्स या फिर किसी के आचरण में त्रुटि देखी, कोई कोई गलती कर रहा है, या फिर कोई आपके वरिष्ठ भक्त वही उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, या फिर यू नो जो आपके लिए रिस्पेक्टेड है ऐसे लोगों के आचरण में असंतोष देखा जाता है, तो ये सब आपके उत्साह को नष्ट करने के कारण बन सकते हैं। इससे आपका उत्साह नष्ट हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन ऐसी अवस्था में उत्साह को बनाए रखना और ऐसे भक्तों की संगति करना कि जो आपके उत्साह को नष्ट ना होने दे, तो ऐसे भक्तों की संगति करने से उत्साह को बनाया जा सकता है। उत्साह जो है वो भक्ति की माता है, श्रद्धा की मदद है। उत्साह जो है वो श्रद्धा का मूल आधार वहां से है, और इसके कारण उस भक्तों को साधु को संगत बहुत आवश्यक है, क्योंकि भजन क्रिया का पहले आ जाता है साधु संगत। तो भजन क्रिया को स्ट्रॉन्ग या सफल बनाने के लिए वैष्णव की संगति बहुत आवश्यक है। वही बार बार आपको संगति करा करके बार बार आपको उत्साह दान में दे सकते हैं। कई बार कहा जाता है ना, कोई सुखी नहीं है तो फिर वो भक्त नहीं है। अगर आप ये नहीं कह सकते कि मैं भक्त भी हूं और मैं दुखी भी हूं, ये नहीं हो सकता है। वैसे अगर आप भक्त हो तो आप दुखी नहीं हो सकते, आप सुखी ही होने चाहिए, क्योंकि भक्ति सुख से की जाती है। सुख सुखम कर तुम अभी, भक्ति में दुख का कोई स्थान नहीं है। दूसरों का प्लेजर, लोग क्या सोचेंगे, लोगों की प्रसन्नता, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे प्रयास भगवान की सेवा के लिए ये इम्पोर्टेंट है। यस, सो ओके, सो एनी क्वेश्चन विद दिस?
ये जो श्लोक है 26, तो ये तो एक तरह से पूरा समरी है। भगवान ने एक श्लोक में कैसे भक्त बनना है, मतलब अमेजिंग सब कुछ है
इससे। कितना कर्म भक्त को कैसे किस प्रकार से कर्म करना,
इसके बाहर कुछ है ही नहीं है।
तीन गुणों से पर है, फिर अहंकार से रहित है, फिर अविचल भाव से स्थिर रह करके, देन व्हाट एल्स,
उत्साह
से,
यस, सिद्धो असिद्धो, सिद्धि असिद्धि में,
सफलता विफलता में स्थिर होकर के, इस तरह से मेरे लिए कर्म करते हैं। दिस इज वंडरफुल श्लोक। सो स्टॉप हियर। आगे का एक श्लोक आगे जब नेक्स्ट टाइम हमें होंगे तो समझ के रूप में एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे। अब ये पांच छह श्लोकों का